सभी पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी प्यारी पहाड़न ऋतिका शर्मा पर फिर से हाजिर हूँ अपनी कहानी के साथ। मेरी उम्र 45 साल की है, मैं हिमाचल से हूँ और 9 साल पहले ही मेरा तलाक हो चुका है। मेरा 20 साल का बेटा है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है। तलाक के बाद से मैं अपने बेटे के साथ एक अलग घर में रहने लग पड़ी, जो मुझे कोर्ट के फैसले के बाद मिला। शादी के बाद से मैं पति के बिजनेस में ही साझेदार थी, लेकिन तलाक होने के बाद मैंने उनसे अलग होकर अपना बिजनेस किया। मेरा रंगोरा फिगर 34-32-37 का है। पिछले 9 साल से मैं शहर की एक ट्रैवल एजेंसी चलाती हूँ। ये तो आप सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती और सीधा कहानी पे आती हूँ। तो ये जो बात है ना, ये इस साल फेब की है। हुआ यूँ कि पिछले साल पास के गांव में एक छोटे वार्षिक मेले में जाना था। दरअसल मेरी एक सहेली जिला परिषद की सदस्य है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते वो उस मेले के समापन समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थी। उसने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा। मैं भी काफ़ी वक्त से किसी काम में गई नहीं थी, तो मैंने झट से हाँ भी भर दी। उस दिन मैं सज-धज कर साड़ी पहनकर तैयार हुई और अपनी सहेली के साथ कार्यक्रम में जाने के लिए निकली। कार्यक्रम में पहुंचकर हमारा स्वागत हुआ और हमने स्टेज पर अपनी कुर्सियां संभाली। कार्यक्रम में उस दिन कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला था। कुश्ती उत्तर भारत के लगभग हर मेले में आयोजित किया जाने वाला खेल है। इस मेले में भी दूसरे प्रदेशों के बहुत से पहलवान आते हैं। हमारे पहुंचने से पहले ही कुश्ती का फाइनल मुकाबला शुरू हो गया, जो मेला मैदान में स्टेज से थोड़ा दूर चल रहा था। मुकाबले की समाप्ति के बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा स्टेज पर कुछ लोक नृत्य किए गए और फिर आई बारी समापन समारोह की। मेरी सहेली मंच के कोने में रखे डाइस पर जनता के संबोधन के लिए गई, तो मैं भी मंच से नीचे नजरें दौड़ाकर ध्यान से देखा। कुश्ती करने आए हट्टे कट्टे पहलवान मुझे ही देख रहे थे। मन को खुशी हुई और मैंने भी उनकी तरफ उड़ती नजरों से देखा। मेरी सहेली का संबोधन खत्म हुआ तो आखिर बारी आई पुरस्कार की, जिसमें पहले स्कूल के बच्चे, फिर स्थानीय कलाकार और लास्ट में कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता आए। मेरी सहेली सबको इनाम दे रही थी और मैं उसके बगल में खड़ी थी। कुश्ती का एक पहलवान भी इनाम लेने मंच पर चढ़ा, जो पिछले आधे घंटे से मुझे ही देख रहा था। मुझे देखते हुए मैंने उसे कई बार नोटिस किया, पर नजरें मिलने पर वो कहीं और देखता। मंच पर उसे चेक, मोमेंटो सब मिल रहे थे। मेरी सहेली उससे कुछ सामान्य सवाल कर रही थी और उसकी नज़रें मेरी सहेली तो कभी मेरे वक्ष पर ज़्यादा थी। पुरस्कार लेने के बाद आगे बढ़ते हुए जब हमारी नज़रें मिली, तो उसने पलक झपकते ही मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देखा कि मेरे शरीर में बिजली कौंध गई। मुझे जैसा एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। अब मेरा मन भी लुच्चा होने लगा और मैं उसे पहलवान को एक औरत की नज़र से देखना शुरू कर दिया। 5 फिट 8 इंच लंबा बलिश शरीर वाला वो पहलवान नीचे उतर कर भी मुझे घूर रहा था। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के समय भी मुझे देखता रहा। उसने भी मुझे काफ़ी बार देख लिया, इसलिए बार बार ट्राई कर रहा था। समापन के बाद सीधा हम अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ के घर चले गए। उस दौरान वो मुझे नहीं देखा और भीड़ होने की वजह से मैं भी नहीं देख पाई। घर आने के बाद तो बात आई गई हो गई और फिर सामान्य जीवन शुरू हो गया। दोस्तों, आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। कुछ दिन बाद फेसबुक पर मैंने देखा मेरी सहेली ने कुछ फोटोज़ में मुझे टैग किया था। फ़ोटो खोलने पर देखा तो उसी मेले के समापन समारोह के फोटोज़ थे। ये फ़ोटो देखकर मुझे उस पहलवान की याद आई। मैंने टैग हुए नाम और कमेंट्स देखने शुरू किए। मुझे लगा कि शायद उसकी प्रोफाइल दिख जाएगी। ज़्यादा ढूंढने की नौबत नहीं पड़ी क्योंकि पुरस्कार वाली फ़ोटो में वो टैग था। प्रोफाइल फ़ोटो देखकर ही मैं उसे पहचान गई। मैं उसे खुद संपर्क नहीं करना चाहती थी, लेकिन बिना बात किए भी नहीं रह पा रही थी। तो मैंने बहुत सोच समझ कर 2-3 फ़ोटोज़ जिनमें मैं और मेरी सहेली थी उन पर कमेंट किया, सिर्फ इस उम्मीद से कि वो पहलवान उन कमेंट्स को ज़रूर देखेगा और फिर मैसेज करेगा। उसकी प्रोफाइल काफ़ी एक्टिव थी तो मुझे लगा मेरे कमेंट्स को ज़रूर देखेगा। 2-3 दिन बाद फेसबुक चेक करती हूँ तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट में वो पहलवान भी दिखाई देता है। मतलब मेरा कमेंट करने का आइडिया काम कर गया, लेकिन मैं उसे ऐड नहीं करती। मैसेज में अनजान बनने का नाटक करके पूछती हूँ कि वो कौन है और मुझे कैसे जानता है। वो मुझे कहता है कि मेले में देखा था और दोस्ती करना चाहता है। मैं उसे पहले चैटिंग में ज़्यादा भाव नहीं देती और ना ही ऐड करती हूँ। 2-3 दिन उसके रोज़ मैसेज आते हैं जिनका मैं कोई खास उत्तर नहीं देती। मैं उससे कहती हूँ कि मेरे परिवार के सदस्य फेसबुक मित्र हैं, इसलिए मैं यहाँ किसी गैर को ऐड नहीं करती। अगले दिन वो मैसेज में अपना व्हाट्सअप नंबर देकर मैसेज करने को कहता है। मैं उसे मना कर देती हूँ और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट कर देती हूँ। अभी तक जिन लोगों से मेरा शारीरिक संबंध रहा है वो मेरे निजी जीवन से दूर ही थे, जिन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये पहलवान मेरे शहर में बहुत लोगों को जानता है। जाहिर सी बात है, मुझे भी जान गया और मैं बदनामी मोल नहीं लेना चाहती थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन है कि मानता ही नहीं, दिमाग में बस वो पहलवान छाया हुआ था। कुछ दिन बीतने के बाद मैं उसके दूसरे नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ, मैंने निक्कू से बात करने के लिए ले रखा था। वो पहलवान हिमाचल के एक अन्य ज़िले का रहने वाला है और उसका अपना अच्छा खासा कारोबार है। पहलवान और कसरती करने का शौक़ है उसे। कुछ दिन हमारी व्हाट्सएप पर बात हुई, थोड़े दिन में व्हाट्सएप चैट से फ़ोन कॉल पर। मेरे अंदर की आग उससे छिपी नहीं थी। मैं उससे मुझसे क्या कहना चाहते हैं हम दोनों जानते थे। बातें सामान्य से कब चेक्स पे पहुँच गई पता ही नहीं चला। कुछ ही दिनों में हम दोनों में खुलकर बातें होने लगी। पहलवान पर मेरा जादू चल गया, वो मुझे मिलने के लिए बेताब उठा। वो मुझसे बार बार मिलने की योजना बनाने के लिए कहता है लेकिन मैं मना कर देती हूँ। मन तो मेरा भी होता है लेकिन सोचना पड़ता है ना। ऐसे कुछ दिन बीते और कुछ दिन बाद मेरे एक अन्य ज़िले के हिल स्टेशन काम के सिलसिले से जाने का कार्यक्रम बना। हिल स्टेशन का नाम मैं बताऊँगी नहीं। वहाँ एक कॉटेज लीज पर लेने और टूरिज्म के पर्पज से चलाने का मेरा काफ़ी समय से विचार था, लेकिन सही प्रॉपर्टी और डील अब जाकर मुकम्मल हो पाई। प्रॉपर्टी मुख्य शहर से थोड़ा दूर वीराने में है, जहाँ आसपास और भी होटल होम स्टे हैं लेकिन थोड़ी दूर पे। मैं कुछ महीने पहले भी एक बार लोकेशन देखने गई थी और अब उसे व्यापार के लिए मेरा जाना ज़रूरी था। तो मैं कुछ दिन वहाँ रह कर सब ज़रूरी काम करवाने के लिए गाड़ी से निकलती हूँ। मेरा 2-3 दिन वहीं रुकने का प्लान है। घर से सुबह निकल कर शाम तक मैं कॉटेज पर पहुँचती हूँ। अगले 2-3 दिन में सभी ज़रूरी काम करने के बाद रात को मैं पहलवान को फ़ोन मिलाती हूँ और उसे बताती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। अगर वो मिलना चाहता है तो कल यहाँ कॉटेज पर आ जाए। अभी स्टाफ में सिर्फ एक कुक और हाउस कीपर ही हैं, जिन्हें मैं 2 दिन की छुट्टी देती हूँ ये बोलकर कि 2 दिन मेरे रिश्तेदार आएंगे जो सप्ताहांत एकांत में बिताना चाहते हैं। पहलवान मुझसे मिलने के लिए पागल हो गया है, कहता है उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा मौका भी मिलेगा। उसके घर से यहाँ की दूरी 5 घंटे की है। शाम के अंधेरे में पहलवान दिए पते पर पहुँचता है। मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब हो रही हूँ। पहलवान पहुँचा, हम आमने सामने बैठते हैं और बातें करते हैं। बातें करते करते वो मुझे अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है। मैं कुर्सी से उठकर सोफे पर बैठती हूँ तो वो खिसक कर मेरे साथ सट कर बैठ जाता है। मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और मेरे होठों पर होंठ रखकर उन्हें चूम लेता है। मैं भी उसका साथ देती हूँ। उसके बाद खड़ा होकर मुझे किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाता है और कमरे में ले जाता है। मैं कहती हूँ जाओ पहले नहा कर आओ। फिर नहाने जाने से पहले वो बैग से शराब की छोटी बोतल निकाल कर टेबल पर रखता है। मैं शराब नहीं पीती लेकिन मुझे उसके पीने से भी कोई आपत्ति नहीं। जब तक वो नहा कर निकलता है मैं खाने के लिए प्लेट में नमकीन वगैरह निकाल देती हूँ। सिर्फ चड्डी और बनियान पहनकर वो नहा कर निकलता है। इतना विशाल का शरीर तो मैं पहली बार देख रही हूँ। चड्डी और बनियान हल्की हल्की भीगी हुई शरीर से चिपकी है। गीली चड्डी पर लंड का उभार साफ दिख रहा था। कहता है कपड़े उतारने ही हैं तो इसलिए पहनेगा नहीं। मेरे कमरे में एक तरफ हीटर चल रहा है, स्वेटर भी पहन रखा है। पहलवान को नंगे भी ठंड नहीं लग रही। वो बोतल से पैक बनाकर धीरे धीरे पी रहा है। मुझे अपने पास गोदी में बैठने के लिए बुलाता है। मैं जाकर उसकी गोदी में बैठ जाती हूँ और हमारे होंठ फिर मिल जाते हैं। बीच में रुक कर वो पैक गटकता है और मुझे चूमता है। साथ में एक हाथ मेरे पीठ पर फिराता है। लोहे की रॉड जैसा लंड हाथ में लेकर मैं सहलाती हूँ। मुझे बिस्तर पर लटाकर मेरा सर हवा में लटकता रख खुद नीचे खड़ा होकर मेरे मुंह में लंड घुसाकर अंदर बाहर करना शुरू करता है। मेरी आवाज़ और सांस दोनों नहीं निकल रही। दोस्तों आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। मैं लेटे लेटे उसे रुकने के लिए कहती हूँ पर वो नहीं रुकता। 4-5 मिनट यूँ ही मेरे मुँह की ठुकाई कर गले तक लंड डालकर अंदर ही चढ़ जाता है और तब तक नहीं निकालता जब तक आखिरी बूंद नहीं निकल जाती। मुँह के अंदर झड़वाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन अब मेरे सभी दीवाने मेरे मुंह में झड़ना पसंद करते हैं तो मैं उन्हें रोकती नहीं। पहलवान का लंड 5 मिनट में फिर तन जाता है। अब वो मुझसे मुठ मरवाने के लिए फिर से लंड हाथ में दे देता है। एक हाथ से मेरे चूत में फिंगरिंग करने के बाद लंड के टोपे को चूत के ऊपर रगड़ने लगता है। मैं आंखें बंद कर स्वप्न लोक की सैर करती हूँ। पहलवान अपना लंड धीरे धीरे चूत में उतार देता है जिसे मैं आंखें भरते हुए पूरा अंदर ले लेती हूँ। मेरी चूत की असली ठुकाई अब चालू होती है। पहलवान पूरे जोर से शॉट लगाकर मेरी चुदाई कर रहा है। हर बार पूरा लंड बाहर निकाल कर जड़ तक ठोंकता है। सिलेंडर में पिस्टल चलने की दनादन मेरी पिलाई चल रही है और मैं नीचे लेटे अधमेरी से सस्कारियाँ भर रही हूँ। उफ, मैं उसे मना करती हूँ लेकिन वो मानने वालों में से तो है नहीं। सुबह पहलवान के जाने से पहले एक आखिरी ठुकाई बाथरूम में शावर के नीचे साथ में भीगते हुए होती है। हम दोनों का मन और शरीर तृप्त हो चुका है। उसके बाद पहलवान मुझसे विदा लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। मैं एक दिन और रुककर आराम करती हूँ और अपना काम निपटा कर वापस चल देती हूँ। इसके बाद और भी बहुत सारी यादगार रातें हुई। मेरी पहली गांठ ठुकाई के बारे में अगली बार सुनाऊंगी। दोस्तों, तब तक के लिए आपका इंतज़ार रहेगा।